आणि चलले इथे 23/9/66 ची रात्री क्लास.
The Vani that was being discussed was a night class dated 23/9/66. The topic being discussed was
जबकि बाप स्वयं कहते हैं मेरे बिगर किसी को याद न करो.
When the father himself says remember no one except me.
Yeah.
What?
Student टीचर से पढ़ाई पढ़ता है.
A student learns from the teacher.
स्टूडेंट भी टीचर में के साथ है.
A student is with the teacher too.
स्टूडेंट भी प्रैक्टिकल में है, टीचर भी प्रैक्टिकल में है.
The student is practically present as well as the teacher is practically present.
तो स्टूडेंट को 8 घंटे टीचर से पढ़ाई पढ़ता है तो कौन याद आएगा.
So, if the student learns from the teacher for 8 hours, whom will he remember?
टीचर याद आएगा ना.
The teacher will come to his mind, won't he?
वहाँ तो उस दुनिया में ढेर टीचर्स होते हैं.
There in that world, there are a lot of teachers.
वो हद की दुनिया.
That is a limited world.
और यहाँ बाप जो बेहद की दुनिया स्थापन कर रहे हैं यहाँ पर.
And here, in the unlimited world, that the father is establishing.
एक ही supreme teacher है.
There is only one supreme teacher.
और तुम पढ़ाई भी किससे पढ़ते हो.
And from whom do you study the knowledge?
एक टीचर से पढ़ाई पढ़ते हो.
You study it from the one teacher.
तो स्वयं बाप कहते हैं बाप ही टीचर भी है.
So the father himself says the father is a teacher as well.
वो स्वयं कहते हैं मेरे बिगर किसी को याद न करो.
He himself says remember no one except me.
जो पढ़ाई पढ़ाने वाला है उसको याद करो.
Remember the one who teaches the knowledge.
तो बाप का ये फरमान हुआ ना. क्या.
So this is the फरमान that is the order of the father, isn't it? What?
मेरे सिवाय और किसी को याद. फरमान तो नहीं मानेंगे.
Remember no one except me. Will you not obey the फरमान.
ना फरमान बरदार बनेंगे क्या.
Will you become disobedient, nafarman bardar?
और जो बनते हैं.
And those of you who become disobedient.
एक बाप के सिवाय कोई दूसरों से भी पढ़ाई पढ़ते हैं.
Those who study knowledge also from people other than the one father.
और उनको टीचर समझ करके याद करते हैं क्योंकि याद तो आएगा.
And remember them considering them as teachers. Because they will certainly come to mind.
अगर पढ़ाई पढ़ लेंगे कोई दूसरे से तो याद आएगा ना.
If you study the knowledge from someone else, then they will come to your mind, won't they?
तो याद आएगा तो नाफरमान बच्चे हुए या फरमान पढ़ता हुए. नाफरमान.
So, if they come to your mind, then did you become disobedient children or obedient ones? You became disobedient.
बाप से वर्षा मिलना है ना.
You have to receive the inheritance from the father, haven't you?
तो फरमान बरदार बच्चा बनना चाहिए ना.
So you should become an obedient child, shouldn't you?
ईश्वर बा भगवान बा प्रभु कहना इन बातों से वर्षे की खुशबू नहीं आती.
You do not get the fragrance of the inheritance by uttering the words. ईश्वर भगवान और प्रभु दैट इज गॉड.
अब बाप कहते हैं मेरी याद में रहो.
नाउ द फादर सेज रिमेन इन माय रिमेम्बरेंस.
कहते कौन है.
हु सेज इट.
जो कहने वाला है मुख से कहेगा ना.
द वन हु सेज इट विल से इट थ्रू द माउथ विल ही नॉट.
वो कहता है कि और दूसरों की याद में न रहो सिर्फ मेरी याद में रहो.
He says, do not remain in the remembrance of the others. Remain only in my remembrance.
इसका नतीजा क्या होगा.
What will be the result of it?
सिर्फ मेरी याद में रहेंगे.
इफ यू रिमेन ओनली इन माई रिमेम्बरेंस,
कोई दूसरे की याद में नहीं रहेंगे,
इफ यू वोंट रिमेन इन द रिमेम्बरेंस ऑफ एनीवन एल्स,
तो इसका नतीजा क्या होगा?
देन व्हाट विल बी द रिजल्ट,
तुम्हारी याद कैसी होगी?
हाउ विल योर रिमेम्बरेंस बी,
व्यभिचारी होगी या व्यभिचारी होगी?
विल इट बी व्यभिचारी, अडल्ट्रेटेड और अव्यभिचारी, अनअडल्ट्रेटेड?
अब व्यभिचारी याद होगी।
द रिमेम्बरेंस विल बी अव्यभिचारी,
तो तुम्हारी योगाग्नि बहुत तीखी हो जाएगी।
सो द फायर ऑफ योर रिमेम्बरेंस, योगाग्नि विल बिकम वेरी इंटेंस,
उस योगाग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे।
योर सिंस विल बी बर्न्ड थ्रू दैट फायर ऑफ रिमेम्बरेंस,
क्या सिर्फ मेरे को याद करेंगे?
व्हाट इफ यू रिमेम्बर मी अलोन,
और कोई को याद नहीं करेंगे?
इफ यू रिमेम्बर नो वन एल्स,
तो जो तीखी अग्नि होगी अब विचारी याद की, उससे तुम्हारे सारे विकर्म दग्ध हो जाएंगे।
Then all your sins will be burnt in the intense fire of unadulterated remembrance.
तुम बच्चों को फरमान बरदार बनना है।
You children must become obedient.
क्या?
What?
अभी भी ऐसी गलती होती रहती है।
Even now such mistakes keep happening.
क्या गलती होती रहती है? एक को छोड़ करके अनेकों से सुनते रहते हो।
Which mistakes keep happening? You leave the one and keep listening to many.
तो नाफरमान हुए ना?
So you are disobedient, aren't you?
यहाँ तो एक से ही पढ़ाई पढ़नी है, एक से ही वर्षा लेना है, एक को ही याद करना है।
Here you have to learn from one only. You have to obtain the inheritance from one only. You have to remember one only.
धंधा आज भी करना है।
You have to look after your business, etc. as well.
ऐसे नहीं कि धंधा आदि छोड़ देना है, पेट के लिए दूसरों से भीख मांगनी है, नहीं।
It is not that you have to leave your business, etc. and beg from others for your stomach. No.
शरीर निर्वाह अर्थ ये धंधा आदि तो करना ही है।
You have to certainly do this business, etc. for your livelihood.
क्या?
What?
मान लो सरेंडर है।
Suppose someone is surrendered,
तो सरेंडर है तो तन तो है ना?
If they have surrendered themselves, they have the body, don't they?
तन तो बाबा ने दिया हुआ है ना सुरक्षा करने के लिए।
बाबा has given the body in order to safeguard it, hasn't he?
ये भी अमानत है ना उस बाप की।
This too is something entrusted by that father, isn't it?
तो उसे सुरक्षा नहीं करनी है? सुरक्षा करनी है।
So should it not be safeguarded? You have to safeguard it.
अच्छा सुरक्षा भी करनी है?
Okay, you have to safeguard it as well.
तो उस तन के अंदर जो खाना जा रहा है वो मुफ्त का जा रहा है या कुछ मेहनत कर रहे हैं?
Well, whatever food is being consumed by that body, is it being consumed free of cost or are you doing any hard work?
Surrender भी है तो भी कुछ न कुछ मेहनत तो करनी है।
Even if you are surrendered, you have to do some or other hard work.
बाप तो कहते हैं जो surrender है वो 16 घंटे मेहनत करे।
The father says, those who are surrendered, let them work hard for 16 hours.
क्या?
What?
8 घंटे भविष्य 21 जन्मों के लिए और 8 घंटे मेहनत करें वर्तमान वर्तमान शरीर के पोषण के लिए।
8 hours for the future 21 births and 8 hours hard work for the sustenance of the present body.
नहीं तो शरीर का पोषण अगर यज्ञ से होगा और करेंगे कुछ भी नहीं तो बोझा चढ़ेगा ना।
Otherwise, if the body is sustained by the yajna and if they do not do anything, then they will be burdened, won't they?
तो कि शरीर निर्वाह ये धंधा तो सभी को करना है।
So everyone has to do this business for the livelihood.
क्या?
What?
जो सरेंडर है उनका ईश्वरीय धंधा है।
The business is godly for those who are surrendered.
जो नॉन सरेंडर है उनका दुनियावी धंधा भी हो सकता है.
दोज हु आर नॉन सरेंडर्ड कैन हैव वर्ल्डली बिजनेस एज वेल.
लेकिन बाप ने तो ये सबको आफत दी है. क्या?
But the father has given this assurance to everyone. What?
क्या आफत दी है? कि मेरी सर्विस में रहने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते.
Which assurance has he given? He has given the assurance that those children who remain in my service will not die of hunger.
अब कोई भी धंधा करे, सिर्फ मुझे याद करने का ही पुरुषार्थ करना है.
Well, they may do any business. They have to only do the purushart, that is special effort for the soul to remember me alone.
देखते जाना है कि याद से हमारे विकर्म विनाश हुए. क्या?
You must keep checking. Have my sins been destroyed through remembrance? What?
निशानी क्या होगी?
What would be the indication of that?
याद से विकर्म विनाश होंगे तो उसकी निशानी क्या होगी?
The sins will be destroyed through remembrance. What would be the indication of this?
क्या निशानी होगी?
What will be the indication?
मन बुद्धि एकाग्र होगी.
याद से जब पाप कर्मों का बोझा भस्म होगा तो हल्कापन महसूस होगा.
When the burden of sinful actions is burnt through remembrance, you will experience lightness.
और जब हल्कापन महसूस होगा तो खुशी रहेगी.
And when you feel lightness, you will feel happy.
किसी के ऊपर ज्यादा वजन लाद दिया जाए.
If a lot of burden is loaded on someone,
तो वजन से तो उसका दर्द करेगा.
Then his body would experience the pain due to that burden.
वजन बढ़ेगा ना?
The burden will increase, won't it?
ऐसे ही किसी के ऊपर ज्यादा कर्जा लाद दिया जाता है.
Similarly, if someone is burdened with a lot of debt,
या ज्यादा कर्जा हो जाता है तो कर्जा कितना अंदर अंदर दुख देता है.
Or if someone's debts are high, then that debt gives so much pain within.
उसी में कुत्ती लगी रहती है तो दबा हुआ रहता है ना, खुशी गायब रहती है.
The intellect remains focused on that, so he remains pressurized, doesn't he? The joy vanishes.
इसलिए बाप कहते हैं कोई भी कर्जा मत उठाओ.
That is why the father says, do not take loan from anyone.
यहाँ भी जो सरेंडर हो जाते हैं.
Even here, those who surrender
और ईश्वरीय सेवा कुछ नहीं करते हैं.
And do not perform any godly service.
तो कर्जा उठाते हैं कि नहीं?
Then do they become indebted or not?
तो कर्जा उठाते हैं.
So they become indebted.
तो बाप कहते हैं अभी बहुत हल्के फुल्के रहने का टाइम है.
So the father says, now it is the time to remain very light.
अगर खूब बाप की अव्यभिचारी याद में रहेंगे.
If you remain very much in the unadulterated remembrance of the father,
कोई को याद नहीं करेंगे सिवाय बाप के, तो तुम्हारे पाप कर्म जल्दी जल्दी भस्म होंगे और तुमको हल्कापन महसूस होता है.
If you remember no one except the father, then your sins will be destroyed very soon and you will keep experiencing lightness.
जब कर्मातीत अवस्था हो और लड़ाई सामने खड़ी हो तब समझा जाए हमारे विकर्म विनाश हो गए.
When the karmatit stage, that is stage beyond the effect of actions, is attained and the war is standing in front of us, then it can be considered that our sins have been destroyed.
Yeah.
What?
ऐसा भी टाइम आएगा कि लड़ाई सामने दिखाई पड़ेगी.
Such a time will come too when the war will appear to be in front of us.
ये महावारी महाभारत गृह युद्ध है.
This is a महाभारी महाभारत civil war.
इस युद्ध से पसार जरूर होना पड़ेगा.
We will certainly have to pass through this war.
है नहीं, हमारे हमको लड़ाई झगड़े झगड़े से क्या मतलब?
It is not that we think we don't have anything to do with this fight or dispute.
ये युद्ध जो है वो लड़े बगैर राजाई नहीं मिलेगी.
We will not achieve kingship without fighting this war.
तुम बच्चों को ये पुरुषार्थ करना है.
you children have to make this special effort for the soul.
बाकी की बातें तो बाप रोज बतलाते रहते हैं.
The father keeps narrating the remaining issues every day.
चक्कर कैसे फिरता है? भक्ति मार्ग क्या है? रोज ही सुनते हो.
How does the cycle revolve? What is the path of bhakti? You listen to this every day.
मूल बात है ये देह सहित देह के संबंध संबंधियों को भूल माँ में कम याद करो.
The main thing is forget this body and all the relatives of the body and remember me alone.
देह को भी भूलो और देह के जो भी संबंध हैं उन सब को भूलो.
Forget the body as well as all the relationships of the body.
और सिर्फ माम एकम मुझे एक को याद करो.
And remember माम एकम that is only me. Remember me alone.
कोई दूजम तीजम को याद न करो.
Do not remember any second or third person.
माम माने मुझे एक को.
माम means me alone.
ये तो क्लियर बात है.
This is clear.
इसमें क्लियर करने की कोई बात गुंजाइश है नहीं.
There is no scope for anything to be clarified in this.
सर्वधर्मान परित्यज्य सब देह के धर्मों को त्याग दो.
सर्वधर्मान परित्यज्य renounce all the religions related to the body.
जो भी देह के धर्म है मैं हिंदू हूँ मैं मुसलमान हूँ मैं ये हूँ ये सब भूलकर अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो.
Forget all the religions of the body. I am a Hindu. I am a Muslim. I am so and so. And realize yourself to be a soul and remember the father.
ये मूल बात है.
This is the main thing.
बाकी मुरली तो रोज मिलती है.
As for the rest, you receive the murli daily.
ये अथाह खजाना है.
This is an immeasurable treasure.
क्या? मुरली. मुरली किसे कहा जाता है?
What? The murli. What is the murli?
स्वयं भगवान जो अपने मुख से बोलता है वो है मुरली.
The versions that God Himself speaks through His mouth are called the murli.
वो तो उन्होंने बांस की बांसुरी बनाई थी.
Well, they have prepared a flute made of bamboo.
मुख के ऊपर लगाई थी.
They placed it on the mouth.
कि बांस की बांसुरी बजाते थे भगवान और गोपियां मस्त हो जाती थी.
Showing that God used to play the flute made up of bamboo and the gopis, that is herd girls, used to become intoxicated.
बांस की बांसुरी की बात नहीं है.
It is not about the flute made up of bamboo.
ये तो मीठी तान है जो तुम बच्चों को मीठी लगती है.
It is a sweet tune which appears to be sweet to you children.
और जो नाफरमान बच्चे हैं उनको कड़वी लगती है नगाड़ा लगता है.
And the disobedient children find it bitter. They find it is like the drum beat.
ये अथाह खजाना है. मुरली मिस करना ठीक नहीं है.
This is an immeasurable treasure. It is not good to miss the murlis.
क्या?
What?
रोज की मुरली जरूर सुननी है.
You should definitely listen to the daily murli.
मुरली खजाना मिल सकती है.
You can get the murli daily.
ये तो बड़े से बड़े कॉलेज हैं. ऐसी ईश्वरीय पढ़ाई में दिलचस्पी लेनी चाहिए.
This is the biggest college. You should show interest in such a godly study.
ये पढ़ाई एक ही बार कल्प में सिर्फ एक ही बार बाप आकर के पढ़ाते हैं.
The father comes and teaches this knowledge only once, just once in a cycle.
इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए.
You should not commit any mistake, that is गफलत in this.
और पढ़ाने वाले बाप को भूलना नहीं चाहिए.
And you should not forget the father who teaches you.
कहो.
Speak.
जो औरों से पढ़ाई पढ़ना शुरू कर देते हैं.
The ones who started studying from others.
वो एक पाप को भूल गए या नहीं भूल गए?
Did they forget the one father or not?
भूल गए.
They forgot him.
भूल गए और भटक गए.
They forgot him and wandered.
बाप ही आकर पति से पागल बनाते हैं.
The father himself comes and transforms us from sinful ones to pure ones.
जो औरों के संग के रंग में आकर के नीचे गिरते गए उनको आकर बाप ही ऊपर चढ़ाता है.
The father comes and enables those souls to rise high. Those who experienced downfall under the influence of the company of others.
उनका उत्थान करने वाला भी कोई और है नहीं.
There is no one else who makes them rise.
Health, wealth, अगर मिल जाती है.
If you have health and wealth,
तो happiness जरूर मिलती है.
Then you certainly receive happiness.
यह आत्मा की तंदुरुस्ती.
This is the well-being of a soul.
सच्चा ज्ञान मिलता है तो आत्मा तंदुरुस्त हो जाती है.
If you get the true knowledge, then your soul becomes healthy.
और wealth है, ये ज्ञान रत्न है ही.
And as regards wealth, there are these gems of knowledge anyway.
जो 21 जन्मों में स्थूल रत्न बन जाएंगे.
Which will become physical gems in the 21 births.
और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों में भी.
And on the basis of the 21 births, even in the 63 births,
जो पुरुषार्थ के संस्कार अभी संगम युग में पढ़ते हैं,
the संस्कार्स of making पुरुषार्थ, which are laid in the confluence age now,
वो संस्कार वहाँ भी हमको ऐसी कमाई कराएंगे.
Those संस्कार्स will cause us to earn such income there as well.
तो ये 21 जन्मों की तुम्हारी कमाई हो रही है.
So you are earning the income for 21 births.
भरपूर कमाई है.
There is a full income.
उसमें कभी गफलत न करो.
Do not commit any mistake in it.
पुरुषार्थ नहीं करेंगे.
If you do not make पुरुषार्थ,
तो कम पद पाएंगे.
You will achieve a lesser post.
अर्थात अपने को घाटे में डालेंगे.
That is, you will bring about your own loss.
इस समय सबका घड़ा पाप से भरा हुआ है.
Now everybody's pot-like intellect is filled with sins.
घड़ा कौन सा है?
What kind of a pot is it?
ये बुद्धि में पापों के संस्कार समाये हुए हैं.
The संस्कार्स of the sins are in the intellect.
जो अनेक प्रकार के अनेकों के संग में रह करके पाप किए हैं, संग का रंग लगाया है.
The various kinds of sins that we have committed while remaining in the company of many, the color of the company that has been applied.
वो बुद्धि में संस्कार समाये गए.
Those संस्कार्स have been assimilated in the intellect.
वो चोरी करता है, एक बार चोरी करता है तो उसको उतना ज्यादा फील होता है.
If someone steals, if he steals once, then he feels very much remorseful about it.
पहली बार जो चोरी करता है ना, तो उसको ज्यादा फील होता है.
The one who steals for the first time feels more remorseful about it.
फिर दूसरी बार करता है तो कम फील होता है.
Thereafter, when he does it for the second time, he feels remorse to a lesser extent.
तीसरी बार करता है तो और कम फील होता है. ऐसे करते करते उसकी आदत पक्की हो जाती है.
When he does it for the third time, he feels remorseful to an even lesser extent. While repeatedly doing so, he becomes firmly habituated.
फिर समझते हैं हमारा यही धंधा है, हम चोरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या.
Then he feels this is our job. If we do not steal, then what will we eat?
फिर चोरों के आगे ना मिल जाते हैं.
Then he takes the next birth in a household of thieves.
कसाई का बच्चा कसाई के घर में जन्म लेता है.
A butcher's child takes birth in a butcher's household.
संस्कार कहाँ से लाया मार काट करने की.
From where did he obtain this संस्कार of bloodshed?
पूर्वजन्म के संस्कार आए तो ऐसे बाप के घर में जन्म ले लिया कि जन्म लेते ही वो संस्कार पक्के हो गए.
the sanskars came from the previous birth. So, he took birth in the house of such a father that as soon as he took birth, his sanskars became firm.
कि गाय काटना कोई पाप, बकरी काटना कोई पाप, पाप नहीं, उसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं कि ये भी कोई पाप है.
That killing a cow is not a sin. Slaying a goat is not a sin. It does not fit into his intellect at all that even that is a sin.
ऐसा पापों का जमघट बैठ जाता है.
Such a multitude of sins is accumulated.
तो बाप कहते हैं जब सबका घड़ा भर जाता है तब मैं आता हूँ.
So the father says, when everybody's pot of sins becomes full, I come.
अभी तो सभी का घर भरा हुआ है ना?
Now everyone's pot is full, isn't it?
एक भी ऐसा नहीं होगा जिसका पाप का घर भरा हुआ ना हो.
There would not be even a single person whose pot of sins is not full.
ये बुद्धरूपी घर सबका पापों से भरा हुआ है.
This pot-like intellect of everyone is filled up with sins.
अब बाप कहते हैं, मैं तो साधुओं का भी उद्धार करने आया
हूँ. Now the father says, I have come to uplift the sages as well.
क्या?
What?
साधु संत महात्मा है तो समझा जाता है ये ज्यादा किसी को दुख नहीं देते.
About the ascetics and the noblemen, it is thought that they do not bring much sorrow to anyone.
भले तो नहीं देते हैं तो भी जन्म कहाँ से लेते हैं?
Although they do not bring sorrow, how do they take birth?
जन्म तो पतित पने से ही मिलता है.
They are born through sinfulness itself.
विषय से ही जन्म मिलता है.
They are born from person of lust itself.
तो मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ क्योंकि वो भी धर्म की ग्लानी सिखाते हैं.
So I uplift even these sages because even they teach the defamation of religion.
साधु संत वो भी धर्म की ग्लानी सिखाते हैं. कैसे?
Even the holy men teach the defamation of religion. How?
कैसे सिखाते हैं? परमात्मा सर्वव्यापी है.
How do they teach the defamation of religion? They say the supreme soul is omnipresent.
अरे कितनी भारी ग्लानी कर दी.
अरे they have caused such a big defamation.
परमात्मा सर्वव्यापी हो या तो फिर सभी की बातें सुनो.
If the supreme soul is omnipresent, then listen to everyone.
सभी की पूजा करो.
Worship everyone.
सभी को माथा झुकाओ.
And bow to everyone.
जो जैसे चलाए वैसे चलते जाओ.
Keep following whichever path whoever makes you follow.
और वो ही 2500 साल चलते रहे.
And you followed exactly that for 2500 years.
जिसने जो कहा सत्य वचन महाराज.
You said yes, it is true to whatever whoever said.
किसी ने झूठ कहा सत्य वचन महाराज. सच्चा कहा तो भी सत्य वचन महाराज.
If someone said something false, you said Satvachan Maharaj. Your versions are true, Maharaj. If he spoke the truth, then too you said Satvachan Maharaj.
अब बाप कहते हैं ये सर्वव्यापी वाला ज्ञान जो है वो सारी सृष्टि को रसातल में ले गया.
Now the father says, this knowledge of God being omnipresent has taken the entire world to the underworld, that is, Rasatal or hell.
बुद्धि कहीं एकाग्र हो ही नहीं सकती.
The intellect cannot concentrate anywhere.
मैं कहता हूँ कि मैं तो एक व्यापी बनकर के आता हूँ.
I say, I come in one person, एक व्यापी.
क्या?
What?
मैं सर्वव्यापी बनकर के नहीं आता हूँ.
I do not come as an omnipresent being.
अगर सर्वव्यापी समझेंगे तो बुद्धि भटकती रहेगी.
If you consider me to be omnipresent, then the intellect will keep wandering.
So भटक गई.
Therefore, it did wander.
कई मंदिरों में जाते हैं, कई तीर्थों में जाते हैं, कहाँ कहाँ भटकते हैं.
Sometimes people go to temples. Sometimes they visit pilgrimage centers. They wander about in various places.
कहीं साधु संत महात्माओं के पास जाते.
Sometimes they visit holy men and great souls.
अभी मैं कहता हूँ मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापी बनकर के आता हूँ.
Now I say I am not omnipresent. I come in one person.
एक व्यापी बनकर के आता हूँ तो तुम्हारी बुद्धि में जब ये फिक्स बैठ जाएगा, निश्चय बुद्धि हो जाएंगे कि एक वो स्वरूप है जिसमें बाप आया हुआ है.
When I come in one person, so when it becomes fixed in your intellect, you will develop the faith in the intellect that that one is the form in which the Father has come.
और एक का जब स्वरूप बुद्धि में बैठ जाएगा तो तुम्हारी बुद्धि में एक ही छप जाएगा.
And when the form of that one sits in the intellect, then the impression of only one will be affixed in your intellect.
एक ही याद आवेगी.
You will remember only one.
तो बुद्धि एकाग्र बनेगी या बुद्धि भटकेगी.
So will the intellect become concentrated or will the intellect wander?
बुद्धि एकाग्र होगी.
The intellect will become concentrated.
तो ये साधु संत महात्मा है, इन्होंने सबको अधर्मी बनाए दिया.
So these ascetics and noblemen have made everyone irreligious, adharmi.
Dharm bhrasht kar diya.
They have made everyone unrighteous from the religious point of view.
Main to bachchon ka baap hoon. Sarvyapi kaise hoonga?
I am in fact the children's father. How can I be omnipresent?
Main jab aata hoon तब तो आत्माओं को पता पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ.
In fact, only when I come do the souls come to know that they are a soul.
नहीं तो अपन अपन को देह समझे बैठे.
Otherwise, they have considered themselves to be a body.
तो मैं आकर के बताता हूँ तुम आत्मा हो, ज्योति बिंदु, प्रकृति के मध्य में चमकता हुआ सितारा.
So I come and tell them, you are a soul, you are a point of light, you are a star that shines in between the two eyebrows.
तुम शरीर नहीं हो.
You are not a body.
तुम्हारी बुद्धि में जब बैठता है तो तुम अनुभव करते हो, प्रैक्टिस करते हो.
When it sits in your intellect, you experience it, you practice it.
तुमको निश्चय हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, तो जैसे आत्मा का जन्म हुआ.
You develop faith that you are a soul. So it is as if the soul has taken birth.
Basic knowledge के बतौर एक जन्म होता है और एक advanced knowledge के बतौर जन्म होता है.
From the angle of basic knowledge, you take one birth, and from the angle of advanced knowledge, you take another birth.
Basic knowledge में सिर्फ इतना जानते हैं कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, ब्रकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ.
इन द बेसिक नॉलेज यू जस्ट नो आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सोल, आई एम अ स्टार शाइनिंग इन बिटवीन द टू आईब्रोज, आई एम अ लिविंग सोल.
और एडवांस नॉलेज में आते ये भी पता लग जाता है.
एंड आफ्टर एंटरिंग द एडवांस नॉलेज यू ऑल्सो कम टू नो
कि मैं किस धर्म विशेष में पार्ट बजाने वाली आत्मा हूँ.
In which particular religion am I, a soul, going to play my part?
कौन से स्थान विशेष में मुझे विशेष विशेष पार्ट बजाने?
Which particular places have I to play special roles?
मैं कौन सी विशेष देश की वासी हूँ?
Which particular country am I a resident of?
आत्मा जो है वो कोई गुजराती या बंगाली नहीं होती.
A soul is not Gujarati or Bengali, that is belonging to Gujarat and Bengal states in India.
Atma to sang ke rang ke aadhar par kahin ki kahin bhi janm le sakti
hai. A soul of any place can take birth anywhere on the basis of the influence of the company.
Aise nahi hai ki jo abhi videshi hai वो आत्माएं हमेशा विदेश में ही जन्म लेती रही है. नहीं,
इट इज नॉट ट्रू दैट दोज हु आर फॉरेनर्स नाउ दोज सोल्स हैव ऑलवेज बीन टेकिंग बर्थ ओनली इन फॉरेन कंट्रीज. नो,
अभी जो दक्षिण भारत के हैं वो हमेशा दक्षिण भारत में ही जन्म लेते रहे. नहीं,
are that those who belong to South India now have always been taking birth in South India. No.
जैसे जैसे उनके कर्मों के संस्कार संग का रंग लगा वैसा वैसा उनको जन्म हुआ.
As the संस्कार्स of their actions, as the color of the company that was applied on them, so was their birth.
तो मैं बच्चों का बाप हूँ. बाप कोई सर्वव्यापी होता है क्या?
So I am the children's father. Is any father omnipresent?
मैं बाप हूँ. मैं आकर के स्वयं ही अपना परिचय बच्चों को देता हूँ और बच्चों का भी परिचय बाप आकर देता है.
I am the father. I myself come and give my introduction to the children, and the father comes and gives the introduction of the children as well.
कि तुम आत्मा हो.
That they are souls.
बच्चों को साथ में घर कर ले जा घर ले जाऊंगा ले जाऊंगा क्या?
I will take the children home along with me. What?
ऐसे नहीं कि ब्रह्मा का शरीर छूट गया तो मैं वापस चला जाता हूँ.
It is not that Brahma left his body, so I go back.
Paramdham में जाकर के बैठ जाता हूँ.
I go back and sit in the soul world.
या Paramdham से फिर सूक्ष्म पतनवासी ब्रह्मा के तन में आता रहता हूँ.
Or that I keep coming from the soul world into the body of subtle world dweller Brahma.
ऐसी कोई बात नहीं.
It is not true at all.
मैं तो सूक्ष्म पतनवासी ब्रह्मा में आता ही नहीं हूँ.
I do not enter this subtle world dweller Brahma at all.
क्योंकि मेरा तो सूक्ष्म बतन और सूक्ष्म शरीर से कोई कनेक्शन नहीं है.
Because I have no connection with the subtle world or the subtle body.
सूक्ष्म बतन और सूक्ष्म शरीर जो धारण करते हैं उन फरिश्तों में मैं नहीं आता.
I do not come either in the subtle world or in those angels who assume a subtle body.
मैं तो आता हूँ पतित तन में.
आई कम इन अ सिंफुल बॉडी.
और पतित साकार बनेगा या सूक्ष्म बनेगा?
एंड विल अ कॉर्पोरियल पर्सन बिकम सिंफुल और विल अ सटल बीइंग बिकम सिंफुल?
साकार बनता है.
द कॉर्पोरियल वन बिकम्स सिंफुल.
तो मैं साकार शरीर में आता हूँ. साकार शरीर में आकर के इस साकार मुख से वाणी चलाता हूँ.
सो आई कम इन अ कॉर्पोरियल बॉडी. I come in a corporeal body and narrate the vani through this corporeal mouth.
और बच्चों को पतित से पावन बना करके संग के रंग से सुधार करके वापस परमधाम ले जाऊंगा.
And I shall transform the children from sinful ones to pure ones and reform them through the influence of my company and take them back to the soul world.
अकेला नहीं चला जाऊंगा.
I will not depart alone.
कि ब्रह्मा के तन में आऊंगा.
That I would come in the body of Brahma.
और ज्ञान सुना के चला जाऊंगा. नहीं.
And narrate knowledge and depart. No.
बच्चों को वापस लेकर जाता हूँ. कौन सा चित्र बना हुआ है?
I take the children back. Which picture has been depicted?
वापस ले जाने वाला कोई चित्र बना हुआ है?
Has any picture been made about taking the children back?
कौन सा? झाड़ के चित्र में.
Which picture is it? In the picture of the tree.
शिव शंकर भोलेनाथ का चित्र बना हुआ है.
A picture of Shiv Shankar Bholenath has been depicted.
कि सब आत्माएं उनके साथ वापस जा रही है.
Indicating that all the souls are going back with him.
आत्मा बिंदु बिंदु दिखाती है. इसका मतलब ये नहीं कि हम बिंदु बन के जाएंगे शरीर छोड़ देंगे. नहीं.
The souls are depicted in a point like form. This does not mean that we will become points and go and that we will leave the body. No.
शरीर में रहते हुए भी हम आत्म के स्टेज वाले ऐसे बन जाएंगे.
Even while remaining in the body, we will become the ones with such a soul conscious stage.
कि जो बाप का घर आबू अब्बा का घर माउंट आबू है वहाँ संगठित होकर के ऐसे रहेंगे जैसे परमधाम की स्टेज.
That we will gather at Mount Abu, the father's house, the house of Abu Abba, and live there in a stage as if we are in the supreme abode.
निसंकल्पी स्टेज. कोई संकल्प नहीं. शांति लगी पड़ी होगी.
a thoughtless, that is, nisankalp stage. There would be no thoughts at all. There would be only peace all the time.
दुनिया में एटम बम फट रहे होंगे, अशांति मच रही होगी.
Atom bombs would be exploding in the world. There would be disturbances in the world.
और हम बच्चे आसमानी अशांति में आराम से बैठे होंगे.
And we children would be sitting comfortably in heavenly peace.
कोई परवाह नहीं.
There would be no worry at all.
देखो बाप ने हमको पहले ही बताया है कि तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे.
Because the father has already told us, you children will bring the soul world down to this world.
तो मैं बच्चों को साथ घर ले जाता हूँ.
So I take the children home along with me.
कहते हैं ना, नए नए इनको राह दिखाओ प्रभु.
They say, oh God, show the path to the sightless one, don't they?
तो तीसरा नेत्र तो किसी को है नहीं.
So nobody possesses the third eye.
इन आँखों से जो कुछ देखते हैं,
whatever we see through these eyes,
वो सब बस होने वाला है.
All that is going to be destroyed.
तीसरे नेत्र से जो हम देखते हैं,
whatever we see through the third eye,
वो ही सच्ची चीज है. क्योंकि तीसरा नेत्र हमको बाप आकर देते हैं.
Only that is the truth because the father comes and gives us the third eye.
अविनाशी बाप आकर के हमको अविनाशी आंख देते हैं.
The imperishable father comes and gives us the imperishable eye.
तो नो नए नहीं नहीं वो दर दर ठोकरे खाते रहते.
So those who are sightless keep stumbling from one place to another.
क्या?
What?
ठोकर न लगे तो उनके हाथ में क्या दी जाती है?
What is given in their hands to prevent them from stumbling?
लाठी दी जाती
है. A walking stick, lathi is given.
तो बाप ने आकर के ये लाठी.
So the father has come and given us this walking stick.
दंडी स्वामी होते हैं ना?
There are dandi swamis, aren't there? That is some saints of the path of worship who carry a holy stick called dandi with them wherever they travel.
तो बाप ने आकर हमारे हाथों में ये ज्ञान का लठ दिया.
So the father has come and given us this walking stick of knowledge in our hands.
लाठी लेकर और ज्यादा ठोकर खा रहे.
Someone said people are stumbling even more after obtaining the walking stick.
अगर लाठी लेकर के ठोकरें खाते हैं तो उनको असली लाठी नहीं मिली.
If they stumble after getting the walking stick, then they have not received the real walking stick.
हमको तो एक ही लाठी मिली हुई है. मुरली.
We have received only one walking stick, the Murli.
मुरली हमको जो लाठी मिली हुई है इससे हम विषय सागर के पार जाएंगे.
We shall cross the ocean of vices through the walking stick that we have received, that is the Murli.
हाँ, अगर औरों औरों को पकड़ा तो बह जाएंगे.
Yes, if we catch hold of others, we will be washed away.
हमारा तो खवैया एक है.
Our खवैया, boatman, is one.
क्या?
What?
एक खवैया है और एक ही उसकी बल्ली है.
The boatman is one and his oar is also one.
नाव होती है ना? तो नाव में बल्ली लगाते हैं.
For example, a boat. So an oar is used in it.
तो बाप ने हमको लाठी कहो बल्ली कहो वो हमारी जीवन रूपी नैया को पार कर रहा है.
So the father has given us a, call it a walking stick or a rowing stick. He is putting across our boat like life.
भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरे खाते. भक्ति मार्ग आता है रावण से.
People wander from place to place in the path of worship. The path of worship comes from Ravan.
कितने सिर दिखाते
हैं? How many heads are depicted?
दसियों सिर दिखाते.
10 heads are depicted.
माने दसियों लोगों से मत लेते रहते.
It means that they keep obtaining opinions from tens of people.
एक से मत नहीं लेते.
They do not obtain opinion from the one.
उन्हें अनेकों की मत चाहिए.
they require the opinion of many.
बाप आते हैं फल देने, सबसे जास्ती भक्ति सूर्यवंशी शुरू करते हैं.
The father comes to give fruits. Maximum bhakti is started by the Suryavanshis, those belonging to the Sun dynasty.
क्या?
What?
सबसे जास्ती भक्ति
जो सूर्यवंशी होते हैं, चंद्रवंशी नहीं.
Those who are Suryavanshi, not the Chandravanshi, that is, those belonging to the Moon dynasty.
Chandravanshi में सबसे जास्ती भक्ति नहीं करते.
Even the Chandravanshis do not do maximum bhakti.
क्योंकि अगर उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होती.
Because had they done maximum bhakti.
चंद्र. कौन है चंद्र?
चंद्र. Who is चंद्र?
ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा.
ज्ञान चंद्रमा that is the moon of knowledge, Brahma.
और ज्ञान चंद्रमा को फॉलो करने वाले.
And who are the ones that follow the ज्ञान चंद्रमा?
चंद्रवंशी.
The Chandravanshi.
जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को ही सब कुछ मानते हैं.
The ones who consider the ज्ञान चंद्रमा Brahma to be everything.
उसके अंदर किसने प्रवेश किया?
Who has entered him?
और वो प्रवेश करने वाला आगे कैसा पार्ट बजाने वाला है?
And what kind of a role is that one who has entered going to play in future?
वो उनकी बुद्धि में नहीं बैठता.
This does not fit in their intellect.
ऐसी चंद्रवंशी आत्माएं जो है.
Such चंद्रवंशी souls.
वो चंद्रमा को ही फॉलो करती हैं और किसी को फॉलो नहीं करती.
Follow only the moon, that is Chandra. They follow no one else.
लेकिन उनकी भक्ति कम होती.
But they have done less bhakti.
किन के मुकाबले?
सूर्यवंशी
के मुकाबले.
In comparison to whom? In comparison to the Suryavanshis.
जो जितनी जास्ती भक्ति करता है द्वापर युग से.
The more someone does bhakti from the copper age.
उतना जास्ती ज्ञान भी उठाएगा.
The more knowledge he will take.
भक्ति कम करता है तो ज्ञान भी कम उठाएगा.
If someone does lesser bhakti, he will take lesser knowledge.
सब तो जास्ती भक्ति सूर्यवंशी करते हैं.
The Suryavanshis do maximum bhakti.
जब वाम मार्ग शुरू होता है.
When the left path, that is वाम मार्ग begins.
क्या? जब उल्टा मार्ग शुरू होता है.
What? When the opposite path, that is उल्टा मार्ग begins.
उल्टा मार्ग मतलब?
What does the opposite path mean?
द्वापर, द्वैत मार्ग.
द्वापर, the dualistic path.
एक मत नहीं.
There isn't one opinion.
दो द्वैत, दो दो मतें शुरू हो जाती हैं, दो दो धर्म शुरू हो जाते हैं.
Two dual, two opinions start, two religions start.
दो दो कुल शुरू हो जाते हैं.
Two clans start.
तो द्वापर युग से इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह आकर के द्वैत फैलाते हैं.
So from the copper age onwards, Abraham, Buddha, Christ, etc. come and spread dualism.
द्वैत में से द्वैत, द्वैत में से द्वैत.
Dualism emerges from dualism.
तो सब की बुद्धि बिखर जाती.
So everybody's intellect becomes scattered, that is diverted in various directions.
सब भगवान बन के बैठ जाते हैं.
Everyone sits as God.
सब शिव हम कह के बैठ जाते हैं.
Everyone takes a seat calling himself Shiv, Shivoham.
तो भगवान बाप कहते हैं मैं तो सर्वव्यापी हूँ ही नहीं.
So God the Father says, I am not omnipresent at all.
मैं तो एक व्यापी बनकर के आता हूँ.
I in fact come in one person.
और ये ज्ञान आकर सबसे पहले किसको देता हूँ?
And after coming, whom do I give this knowledge to first of all?
सूर्य को देता.
I give it to the sun.
जिसको पहले पहले ये ज्ञान देता हूँ.
The one to whom I give this knowledge first of all.
उससे जो पैदा होते हैं उसको जो फॉलो करते हैं और किसी को फॉलो नहीं करते हैं वो है मेरे पक्के पक्के सूर्य, सूर्यवंशी बच्चे.
Those who take birth from him, those who follow him and no one else, they are my real Suryavanshi children.
Suri ke bachche honge to Suri ko follow karenge.
If they are the children of the sun, they will follow the sun.
Koi koi do ke bachche hote hain.
Some are children of two fathers.
Kya?
What?
Hote hi nahi.
आर देयर सच चिल्ड्रन और नॉट?
एक जन्म देता है और एक पालता है।
वन फादर गिव्स बर्थ एंड द अदर सस्टेन्स।
कृष्ण के बारे में क्या कहा?
What has been said about Krishna?
कृष्ण को एक जन्म देता है और दूसरा पालता है।
One father gives birth to Krishna and the other sustains him.
तो एक तो बाप के संस्कार आएंगे आत्मा में।
So firstly the soul will get the संस्कार of the father who gives birth.
बाप का खून आएगा कि नहीं?
Will he get the father's blood or not?
और दूसरा जहाँ पला है वो पालना के संस्कार भी आत्मा में।
And secondly, the household where he was sustained, those संस्कार्स of the sustenance will also enter the soul.
तो दो दो प्रकार के संस्कार हो गए ना?
So there are two kinds of संस्कार्स, aren't there?
है? तो सूर्यवंशी के चंद्रवंशी के? चंद्रवंशी है।
So will they be called Suryavanshi or Chandravanshi? They are Chandravanshi.
चंद्रमा में अपनी रोशनी तो होती नहीं।
The moon does not have light of its own.
चंद्रमा स्वयं प्रकाशित होता है या किसी के प्रकाश से प्रकाशित होता है?
Does the moon have its own light or does it shine with the light of someone else?
सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है।
It shines with the light of the sun.
द्वैत हो जाता है।
There is dualism.
अभी बाप कहते हैं तुम तो एक को याद करने वाले हो।
Now the father says you are the ones who remember the one.
क्या?
What?
एक से ही सारी प्राप्ति करते हो।
You obtain all the fruits from only one.
किसी और से तुम्हें कोई प्राप्ति करने की दरकार रहती नहीं।
There does not remain any need for you to obtain fruits from anyone else.
हिसाब किया जाता है ना?
A calculation is made, isn't it?
कि वहाँ 9 लाख होते हैं।
That there are 9 lakh deities there.
कहाँ?
Where?
सत्युग.
In the golden age.
सत्युग कब आएगा?
When will the golden age come?
विनाश होने से पहले आएगा या बाद में आएगा?
Will it come before the destruction takes place or after it?
सत्ययुग।
सत्ययुग, that is the age of truth.
अगर जो पहले आएगा वो तो स्वर्णिम संगम युग होगा।
If it comes before destruction, then it would be a golden confluence age, स्वर्णिम संगम युग।
उसको सत्ययुग नहीं कहेंगे? जब 9 लाख की पूरी आबादी हो जाएगी तो क्या कहेंगे? सत्ययुग।
It will not be called the golden age when the population reaches the complete 9 lakhs number, that is 900,000. Then what will it be called? The golden age.
तो वो 9 लाख की जो आबादी है, वो 9 लाख सितारे आसमान वाली नहीं है।
So that population of 9 lakhs is not the 9 lakh stars in the sky.
वो धरती के सितारे हैं कि जो विनाश में सारी दुनिया में सूर्य की चमक मारेंगे।
They are the stars on the earth who will radiate the light of the sun of knowledge in the entire world at the time of destruction.
ज्ञान की चमक सारी दुनिया में फैलाएंगे।
They will spread the light of knowledge in the entire world.
सारी दुनिया उनसे पढ़ाई पढ़ेगी।
The entire world will study knowledge from them.
ज्ञान सूर्य के बच्चे सूर्य के समान प्रकाशित होंगे।
The children of the sun of knowledge will shine like the sun.
तो 9 लाख है।
So there are 9 lakhs.
तो बाकी 2.5 हजार साल में कितनी वृद्धि हो जाती है?
Well, how much does it increase in the remaining 2500 years?
द्वापर युग आते आते 2.5 हजार साल में।
By the beginning of the copper age, in the 2500 years,
सत्युग के आदि में पहले जन्म में तो 9 लाख।
In the beginning of the golden age, the population is 9 lakhs in the first birth.
तो 2.5 हजार साल में 21 जन्म में कितनी वृद्धि हो जाती है?
So how much does it increase in 21 births in 2500 years?
है? 5 से 10 करोड़ हो जाते।
the population increases to 5 to 10 crores, that is 50 to 100 million.
इतनी वृद्धि होती है.
This much increase takes place.
वहाँ विकार की बात नहीं होती, इसलिए वृद्धि भी कम होती है. क्या?
There is no question of vices there. That is why there is a slower growth of the population. What?
वहाँ विपरीत कर्म नहीं होते.
There are no opposite, विपरीत actions.
वि माना विपरीत, कार माने कर्म.
वि means opposite, कार means कर्म or actions.
कैसा कर्म नहीं होता? विपरीत कर्म.
What kind of actions are not there? Opposite actions, विपरीत कर्म.
विपरीत कर्म क्या होता है?
What are opposite actions?
विपरीत कर्म माने पाप कर्म.
Opposite actions mean sinful actions.
जो श्रीमत नहीं है वो कर्म.
Actions that are against the श्रीमत.
श्रीमत क्या है? किसी को दुख नहीं देना.
What is the श्रीमत? You must not give sorrow to anyone.
किसी से दुख नहीं लेना है.
You must not take sorrow from anyone.
न लेना है न देना है.
You must neither take nor give sorrow.
तो बोला ऐसी आत्मा जो किसी से दुख लेती भी नहीं और किसी को दुख देती भी नहीं, तो उसके विकर्म बनते नहीं.
So it has been said, a soul which neither takes sorrow from anyone nor gives sorrow to anyone does not commit any sin.
उसका पाप कर्म बनता ही नहीं.
It does not commit any sinful action.
ऐसा कौन से युग में होता है?
In which age does this happen?
ऐसा सतयुग में होता है.
It happens so in the golden age.
और किसी युग में नहीं होता.
It does not happen in any other age.
त्रेता युग में भी पाप कर्म नहीं बनते.
No sins are committed in the silver age either.
द्वापर में क्या होता है? पाप कर्म बनता. क्यों बनता है?
What happens in the copper age? Sins are committed. Why are sins committed?
क्योंकि एक मत नहीं रही.
It is because the single opinion does not remain.
क्या?
What?
एक ने जो मत दी कि न दुख देना है न दुख लेना है, वो बात टूट गई.
The opinion given by one, we must neither give sorrow nor take sorrow, that was violated.
तब जब ऐसी स्टेज हो जाती है, द्वैत भर जाता है.
When the stage becomes like this, when dualism prevails,
तो दूसरों की मत पर चलने से हम अपने रास्ते को भूल जाते हैं.
Then, by following the opinion of others, we forget our path.
जो देवताओं का मुख्य धर्म है, किसी को दुख नहीं देना है. देना है तो सुख देना है, दुख नहीं देना.
We forget the main duty of the deities, that we should not give sorrow to anyone. If we have to give something, we must give happiness. We should not give sorrow.
तो वहाँ सतयुग में तो विकार की बात नहीं होती.
So, there in the golden age, there is no question of vices.
वहाँ तो तुम्हारा योग बल है.
There, you have the power of yoga.
क्या?
What?
किससे योग लगाते हो?
With whom do you establish yoga? That is connection there.
सतयुग में वहाँ किससे योग लगा लेंगे?
With whom will you establish yoga there in the golden age?
वहाँ किससे योग लगा लेंगे?
With whom will you establish yoga there? Someone said the power of remembrance accumulated in the confluence age would exist there.
नहीं, वहाँ याद की शक्ति के आधार पर हमको 21 जन्म के लिए ऐसा साथी मिल जाता है जो हमारे पुरुषार्थ के समान पुरुषार्थी होता है.
No, on the basis of the power of remembrance of the confluence age, we get such a companion there for 21 births who makes Purushart equal to our Purushart.
बस 21 जन्म उसी में बुद्धि लगती है.
That is all. The intellect remains focused on that one for 21 births.
तो एक में लगातार बुद्धि लगेगी तो पाप कर्म बनेगा या पुण्य कर्म बनेगा?
So, when the intellect is focused on one continuously, will it result in sinful actions or noble actions?
पाप कर्म बनने का सवाल ही नहीं।
There is no question of committing sinful actions at all.
क्योंकि आप भी बिचारी याद है।
Because the remembrance is unadulterated.
राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी।
Radha's eyes will be engrossed in Krishna and Krishna's eyes will be engrossed in Radha.
और किसी में इंद्रियां डूबेंगी नहीं तो पाप कर्म बनेगा, विचार होगा ही नहीं।
The organs will not become attracted to anyone else at all. So, no sinful actions will be committed. There will be no adultery, that is, vyabhichara at all.
वहाँ विकार की बात नहीं होती, माने विपरीत कर्म वहाँ नहीं होते।
There is no question of vices there. It means that no opposite action will be committed there.
क्योंकि एक ही बुद्धि में समाया हुआ है।
Because only one is present in the intellect.
ये अव्यभिचार का प्रताप है।
This is the glory of अव्यभिचार, that is unadulterated relationship.
जहाँ व्यभिचारी दुनिया हो जाती है तो वहाँ दुख बहुत होता है।
Where the world becomes adulterated, there is more sorrow there.
तो वहाँ है योग बल।
So there is the power of योग there.
और कलयुग दुनिया में है भोग बल।
And in the Iron Age world, there is the power of bhog, that is sensual pleasures.
धीरे धीरे मनुष्य गिरते रहते हैं।
The human beings keep experiencing downfall slowly.
इन बातों को भी छोड़, मूल बात है बाप को याद करना।
Leaving aside all these issues, the main issue is to remember the father.
इन सब बातों में भी बुद्धि बिखेरने से ज्यादा अच्छा क्या है? बाप को याद।
What is better than scattering, that is diverting the intellect in all these issues? To remember the Father.
ईश्वर की मत पर चलना है।
You must follow the direction of God.
किसकी मत पर चलना है?
Whose direction do we have to follow?
ईश।
ईश।
ईश माना शासन करने वाला।
ईश means the one who rules.
सारी दुनिया को शासन करने वाला कौन है?
Who is the ruler of the entire world?
अरे एक है या दो है या चार दस बीस है?
अरे is there one or two? Or are there four, ten or twenty?
एक है जो सारी दुनिया को शासन करने वाला ईश्वर है।
There is one God, ईश्वर, who governs the entire world.
तो ईश्वर को याद करना है, ईश्वर की मत पर चलना है तो पहचानेंगे तब तो मत पे चलेंगे।
So if you have to remember Ishwar, that is God, if you have to follow God, only when you recognize God, you can follow Him.
अगर नहीं पहचाना होगा तो क्या करेंगे?
If you have not recognized Him, then what will you do?
तो एक को छोड़ करके अनेकों को पकड़ते रहेंगे।
You will leave one and keep catching hold of many others.
फिर क्या होगा? द्वैत मत होगी।
Then what will happen? There will be two opinions.
द्वैत मत होने से विचारी याद होगी।
When there are two opinions, there will be adulterated remembrance.
विचारी याद होने से पाप कर्म बनेंगे।
Due to adulterated remembrance, sinful actions will be performed.
विचारी याद होगी तो विचारी वाइब्रेशन बनेगा।
If the remembrance is adulterated, then the vibrations will become adulterated.
विचारी दृष्टि बनेगी।
The vision will become adulterated.
विचारी दृष्टि और वाइब्रेशन बनने से फिर कर्मेंद्रियां भी विचारी जरूर बनेगी।
When the vision and vibrations become adulterated, then the organs of action will certainly become adulterated as well.
अब कर्मेंद्रियां जब विचारी बनती है तो पक्का वैश्याली की शूटिंग करने वाला बन जाता है।
And when the organs of action become adulterated, then the person firmly becomes the one who causes the shooting of a brothel, that is वैश्याले।
अभी बाप कहते हैं ईश्वर की मत पर चलना है और कोई की मत पर नहीं चलना है।
Now the father says you must follow the opinion of God. You must not follow the opinion of anyone else.
ईश्वर एक व्यापी है क्या?
God comes in one person. What?
सर्वव्यापी नहीं है.
God is not omnipresent.
अगर कोई अपना ज्ञान सुनाता है तो उससे पूछो ईश्वर कौन है.
If anyone narrates his knowledge, then ask him, who is God?
पहले ये बताओ.
First tell me this.
अगर वो इधर उधर करता है?
If he hesitates.
है? अगर वो इधर उधर की बात करता है?
If he beats around the bush.
तो समझ लो दाल में काला है.
Then you can think that there is something fishy.
ईश्वर की मत पर चलना है, ये है ही मनुष्य से देवता बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी.
We must follow the opinion of God. This is a godly university to transform from human beings to deities.
यहाँ यही खास बात सिखाई जाती है. क्या?
Here, this is the special thing that is taught. What?
कि एक को याद करना है और एक की मत पर चलना है.
That we have to remember one and follow one.
उसको कहते हैं godly university.
That is called godly university.
अगर दो दो की मत पर चलना है?
If we have to follow the opinions of two people.
दो दो चार चार को याद करना है तो वो है सब dogly university.
If we have to remember two or four people, then all those are dogly universities.
क्या? Dogly university जो है dogly पढ़ाई पढ़ाई जाती है.
What dogly knowledge is taught in the dogly universities?
Dogly पढ़ाई जहाँ पढ़ाई जाती है वहाँ teachers भी अनेक होते.
Where dogly knowledge is taught, there are many teachers as well.
यहाँ तो एक ही supreme teacher है.
Here there is only one supreme teacher.
भले निमित्त रूप में कोई बहनें बैठा दी गई हो.
Although some sisters have been made instruments.
लेकिन वो हमारी teacher? टीचर नहीं है. हमारा तो टीचर एक ही सुप्रीम बाप.
दे आर नॉट अवर टीचर्स. अवर टीचर इज ओनली द वन सुप्रीम फादर.
ये गॉडली यूनिवर्सिटी क्यों कही गई?
व्हाई हैज इट बीन कॉल्ड अ गॉडली यूनिवर्सिटी?
क्योंकि एक ही गॉड आकर के इसकी स्थापना करते हैं.
इट इज बिकॉज गॉड अलोन कम्स एंड एस्टैब्लिशेस इट.
एक ही गॉड पढ़ाते हैं.
गॉड अलोन टीचर्स.
कोई दूसरा यहाँ पढ़ाई पढ़ाने वाला है नहीं और दूसरे किसी की दाल यहाँ गलने वाली है नहीं.
देर आर नो अदर टीचर्स हियर. नोबडी एल्स कैन कास्ट हिज इन्फ्लुएंस हियर.
किसके ऊपर?
ऑन होम.
जो आत्मा रूपी बच्चे बने होंगे उनके ऊपर.
ऑन दोज हू हैव बिकम सोल लाइक चिल्ड्रन.
जो देह अभिमानी बने होंगे उनके ऊपर तो दूसरों का भी असर पड़ेगा. क्यों?
Those who have become body conscious will be influenced by others too. Why?
क्योंकि dogly student बने.
It is because they became dogly students.
और जो इधर उधर भटक रहे हैं ना,
हाँ,
ये थोड़े नवलाख जन्म लेंगे.
Someone asked, Baba, will those who are wandering here and there take birth among the 9 lakhs?
इधर उधर भटक रहे हैं तो वो भटकने वाली दुनिया में जन्म लेंगे, कन्वर्ट होने वाली दुनिया में जन्म लेंगे या सीधे सीधे चलेंगे?
Will those who are wandering here and there take birth in the wandering world, in the world that converts, or will they move straight?
एक बात बताओ, जो 83 जन्म लेने वाले होते हैं, 82 जन्म लेने वाले होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं?
Tell me one thing. Do the ones who take 83 births or 82 births convert?
या 84 जन्म लेने वाली जो बीज रूप आत्मा है वो कन्वर्ट होती है?
और टू द सीड लाइक सोल्स विच टेक 84 बर्थ्स कन्वर्ट?
जो 82-83 कम जन्म लेने वाले हैं, कच्चे ब्राह्मण बनते हैं तो कच्चे देवता बनेंगे.
Those who take 82-83 births, those who take less number of births become immature Brahmins. Hence, they will become incomplete deities.
यहाँ पक्के ब्राह्मण बनेंगे तो पक्के देवता बनेंगे.
And those who become mature Brahmins here will become complete deities.
आदि सनातन देवी देवता धर्म वाला और दूसरे धर्म में किसी में कन्वर्ट होकर के जा नहीं सकता.
The one who belongs to the ancient deity religion cannot convert and go into any other religions.
आदि सनातन धर्म का होगा तो आदि देव को पकड़ेगा कि बाद देव को पकड़ेगा
If he belongs to the ancient deity religion, that is Adi Sanatan Dharma, then will he catch hold of the Adi Dev, that is the first deity, or the Bad Dev, that is the later deities?
Adi Dev ko pakdega.
He will catch the Adi Dev.
Baad mein to Ibrahim Buddha kahe thi ye sab baad wale hai na?
Baad wale, baad wale.
Later on, meaning Abraham, Buddha, Christ, all these are later ones, aren't they?
बादवालों को दे अभिमान की बादी बहुत चढ़ती है.
The later ones suffer a lot from the flatulence of body consciousness.
तो ईश्वर की मत पर चलना है ये है ही मनुष्य से देवता बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी क्या?
So we must follow the opinion of God. This is indeed a godly university to transform human beings into deities. What?
ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? मनुष्य से देवता बनने वाली यूनिवर्सिटी है.
Which university is this? It is a university to transform the human beings into deities.
और देवता है 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है.
And those who are complete with 16 celestial degrees are called deities.
देवताएं वो हैं जो पूरे 84 जन्म लेते हैं.
Deities are those who take the complete 84 births.
एक जन्म भी अगर कम हो जाएगा तो वो देवता की कैटेगरी में नहीं आएगा.
Even if there is a single birth less to someone's cycle, then he will not come in the category of the deities.
वो अधूरा ब्राह्मण है और अधूरा देवता बनेगा.
He is an incomplete Brahmin and he will become an incomplete deity.
जो अधूरा देवता बनेगा 83 जन्म लेने वाला उसका मुखिया कौन होगा?
Who will be the head or chief of the one who becomes an incomplete deity, the one who takes 83 births?
Second Narayan.
The second Narayan.
नंबर दो का नारायण होगा.
He will be the Narayan number 2.
तो नंबर दो के प्रभाव में आ जाएगा.
So he will be influenced by the number 2.
यहाँ भी नंबर दो के नारायण के प्रभाव में आएगा.
Even here he will be influenced by the second Narayan.
और वहाँ भी प्रभाव में आएगा.
And there also he will come under his influence.
प्रजा बनेगा.
He will become his subject.
और द्वापर युग में भी जो द्वैतवादी धर्म पिता पहले पहले सृष्टि पर उतरता है उसके धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा.
इन द कॉपर एज एज वेल ही विल बिकम कन्वर्टेड टू द रिलीजन ऑफ द फर्स्ट ड्यूअलिस्ट रिलीजियस फादर हु डिसेंड्स इन दिस वर्ल्ड.
यहाँ भी हमको धोखा देगा. Shooting करेगा.
He will deceive us even here. He will perform the shooting, the rehearsal.
और वहाँ भी धोखा दे करके shooting करेगा.
And he will deceive us there also.
कहाँ? द्वापर युग.
Where? In the copper age.
Convert होकर के दूसरे धर्म में चला जाएगा.
He will convert and go to another religion.
भागेगा अरब देश की तरफ.
He will run towards the Arab country.
कौन से देश की तरफ? अरब.
Towards which country? Arab.
रब. रब माने ईश्वर भगवान.
रब means ईश्वर God.
अरब माने कोई भगवान नहीं.
अरब means there is no God.
अभी तक तो बुद्धि में बैठा था ना कि भगवान आया हुआ है.
Until now it was in their intellect that God has come, wasn't it?
निश्चय पत्र लिख के दिया ना.
They wrote and gave the letter of faith, that is निश्चय पत्र, didn't they?
और छोड़ करके भाग गए दूसरी तरफ.
And then they left and ran towards the other side.
तो अरब वाले हुए कि अरब वाले हुए? अरब देशवासी हो गए.
So do they belong to the side of Rab or Arab? They became the residents of the Arab country.
So ye hai godly university.
So this is a godly university.
Regular padhai chahiye.
Regular study is required.
Kya?
What?
Hai nahi ki ek din murli sun li, do din baith gaye apne dhande dori mein. Nahi.
it should not be the case that you listen to the Murli one day, then you become busy in your business for 2 days. No.
Ishwariya padhai ka mahatva chahiye.
You should give importance to the godly study.
Ek hafte ka course bhi pura kiya hoga, to bhi Murli achhi riti samajh mein aa jayegi.
Even if someone had just completed the 1 week course, he will understand the Murli properly.
Kya?
What?
7 din ka course bhi agar pura kiya hoga, to bhi Murli to achhi tarah samajh mein aati rahegi.
Even if he had just completed the 7 days course, from then onwards, he will understand the Murli properly.
Agar nahi kiya hoga?
If he hadn't done so,
course achhi tarah nahi kiya hoga, to Murli bhi theek se samajh mein nahi aayegi.
If he hadn't done the course properly, then he would not be able to understand properly the Murli either.
Bahut sahaj baat hai, chakkar ko yaad karna.
It is a very easy thing to remember the cycle.
Kya?
What?
Kya yaad karna? Satyu Teta Dwapar Kaliyug Sangamim. Satyu Teta Dwapar Kaliyug Sangamim. Ye.
To remember what? The Golden Age, the Silver Age, the Copper Age, the Iron Age, the Conference Age, the Golden Age, the Silver Age, the Copper Age, the Iron Age, the Conference Age. Is it that? Is it very easy to learn this by heart? No, the intellect should work.
के सतयुग में हमारे कितने जन्म होंगे?
How many births will we take in the golden age?
और हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे पार्ट बजाएंगे? किन आत्माओं के साथ पार्ट बजाएंगे?
And where and which kind of roles will we play? With which souls will we play the roles?
यहाँ वो विशेष विशेष आत्माएं कौन हैं?
Who are those special souls here?
जिनके साथ हमको यहाँ भी शूटिंग करनी है और सतयुग में भी पार्ट बजाना है.
With whom we have to perform the shooting that is recording here as well as play a part in the golden age.
Treta Yug mein bhi part bajana
hai. We have to play a part in the silver age too.
Phir Dwapar Yug mein bhi unhi ke sath part bajana hai.
And then we have to play the part with the same souls in the copper age as well.
Aur Kali Yug mein bhi unke sath part bajana hai aakhri janam mein ja karke.
And in the Iron Age too, we have to play a part with them. We experience downfall in the last birth. Someone said, still we don't leave them. Yes, we experience downfall in the last birth. Someone said something. No, no.
दुख तो मिलना है ना? दुख तो तभी मिलेगा जब हम परमत पर चलते हैं.
We have to experience sorrow, haven't we? We will receive sorrow only when we follow the opinion of others.
दूसरों की बात अपना लेते हैं, अपनी अपने बाप की बात छोड़ देते हैं.
We adopt the versions of others. We discard the version of the father.
तो हम आखिरी में दुखी हो जाते हैं.
So they become sorrowful in the last birth.
तो तुम बच्चे जितना सुख भोगते हो उतना और कोई धर्म के लोग सुख नहीं भोगते.
So the people of no other religion enjoy happiness to the extent you children enjoy it.
कोई कोई बच्चे तो ऐसे हैं जो ब्यासी त्रासी जन्म भी सुख में रहते हैं.
Some children are such that they remain happy even for 82, 83 births.
ब्यासी त्रासी जन्म का सुख भोगते सिर्फ अंतिम जन्म में जाकर के नीचे गिर जाते.
They enjoy happiness for 82, 83 births. Only in the last birth they experience downfall.
तो बहुत सहज बात है चक्कर को याद करना.
So it is very easy to remember the cycle.
क्या बुद्धि ये सृष्टि चक्र में घूमती रहे.
What? The intellect should keep revolving in the world cycle.
कैसे कैसे कहाँ कहाँ किन किन के साथ हमने जन्म लिया.
How, where and with whom have we taken birth?
कैसे कैसे पार्ट बजाया है.
What kind of roles have we played?
ये बुद्धि में आता रहे कौन हमारा बाप है.
They should keep coming to the intellect. Who is our father?
किसके साथ हमने जन्म जन्मांतर पार्ट बजाए हैं?
with whom have we played the parts for many births?
बहुत सही बात है, चक्कर को याद करना.
It is very easy to remember the cycle.
थोड़ी सी बात पर भी attention नहीं देंगे.
If you do not pay attention even on this small issue,
नष्टो मोह नहीं होंगे.
If you do not become nashto moha, detached,
थोड़ी सी बात है.
It is a small issue.
तो बाप क्या करेंगे?
Then what will the father do?
सारा मदार पुरुषार्थ पर है. क्या?
Everything depends on purushark, that is special effort for the soul. What?
इस पर है? पुरुषार्थ पर. पुरुष?
On what? On the purushark, purush.
पुरुष माने आत्मा. किसके अर्थ?
पुरुष means soul. For whose sake?
आत्मा के अर्थ.
For the sake of the soul.
जो भी करें आत्मा के अर्थ करें.
Whatever we do, we should do it for the sake of the soul.
कुछ बोलते भी हैं?
If we say something,
तो जो बोलते हैं वो आत्मा का कल्याण हो रहा है.
Then whatever we say, is it bringing benefit to the soul?
कुछ देखते हैं? तो देखना है.
If we see something, we have to check.
कि हमारे देखने से आत्मा का कल्याण हो रहा है.
Is my seeing it bringing any benefit to the soul?
कल्याण हो रहा है. ये हम किसी का कल्याण कर रहे हैं.
Is it bringing benefit or are we harming anyone?
क्या देखने से कल्याण कल्याण दोनों होता है कि नहीं?
What does seeing bring both benefit and harm or doesn't it?
Attachment के पूर्वक किसी को देखा तो क्या होगा? अकल्याण होगा.
If we see someone with attachment, then what will happen? It will cause harm.
और नष्टो मोह होकर के देखा.
And if we see in a detached manner,
ये इन आँखों से जो कुछ हम देखते हैं वो सब डकोसला खत्म होने वाला है.
That whatever we are observing through these eyes is a farce. It is going to be destroyed.
तो ऐसी आत्मिक दृष्टि जो है उसे कल्याण होगा.
Then such a soul conscious vision will bring benefit.
दृष्टि है ना?
It is a vision, isn't it?
दृष्टि जैसी होगी वैसी वृत्ति बनेगी और वृत्ति जैसी होगी वैसा वाइब्रेशन बनेगा.
As the vision, so shall be the thoughts, that is वृत्ति. And as the thoughts, so shall be the vibrations.
तो दूसरे का भी कल्याण होगा अपना भी कल्याण. आत्म की दृष्टि से दूसरों का कल्याण होता है अपना भी कल्याण होता है.
So it will cause benefit to others as well as the self. Soul conscious vision brings benefit to the others as well as the self.
और दैहिक दृष्टि से अपना भी कल्याण होता है और दूसरी आत्माओं का भी कल्याण होता है.
And the body conscious vision causes harm to the self as well as the other souls.
तो कल्याण का काम करना चाहिए या कल्याण का काम करना चाहिए?
So, should we perform the task of bringing benefit or should we perform the task of causing harm?
कल्याण का काम करना चाहिए.
We should perform the task of bringing benefit.
देखे तो भी checking करते रहे. क्या?
Even when we see, we should keep checking. What?
है? क्या हम कल्याण कर रहे हैं अपना और पराया?
That are we bringing benefit to the self and the others?
अपना और सामने वाले का हम कल्याण कर रहे हैं कल्याण कर रहे हैं?
Are we bringing benefit or harming ourselves as well as the person in front of us?
बात कर रहे हैं तो भी चेकिंग करें कि हमने जो बात की.
Even while talking we must check whatever we spoke.
कोई कोई की तो आदत ऐसी होती जो भी बात करेंगे वाइब्रेशन खराब हो जाएगी.
Some people have a habit that whatever they speak, they spoil the vibrations.
कुछ कुछ ऐसी ऐसी बात कह देंगे जिससे कुछ देह बांध पड़े.
They will utter something which will increase the body consciousness.
बिना देह बांध पड़ा है उनको चैन नहीं आता.
They do not feel comfortable without increasing the body consciousness.
तो वो पाप कर्म तो नहीं हो रहा है हमारी वाणी से.
So we must check whether our speech is resulting in any sinful act.
ऐसे ही कर्म इंद्रिय.
Similar is the case with the organs of action.
ज्ञान इंद्रियां और भी हैं.
There are the other sense organs as well.
आँख तो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रिय.
The eyes are the highest sense organs.
और भी तो ज्ञान इंद्रिय हैं. कान. श्रवणेन्द्रिय है, कान के श्रवणेन्द्रिय।
देर आर अदर सेंस ऑर्गन्स एज वेल। द ईयर इज एन ऑर्गन फॉर लिसनिंग, द ईयर एन ऑर्गन टू लिसन।
हम जो बात सुनते हैं उस बात को हमें धारण करना है, कान में अंदर समाय लेना है।
वॉट एवर वी हियर मस्ट वी असिमिलेटेड, मस्ट वी कंटेन इट विद इन आवर सेंस।
यह एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकालना है।
और मस्ट वी लिसन फ्रॉम वन ईयर एंड लीव इट थ्रू द अदर ईयर।
अगर श्रीमत के अनुकूल बात हमें किसी ने सुनाई।
इफ समवन नरेट समथिंग विच इज इन अकॉर्डेंस विद द श्रीमत,
तो हम उसे धारण करें।
देन वी मस्ट इम्बाइब इट।
उससे हमारा कल्याण होगा, दूसरे का भी कल्याण होगा।
इट विल ब्रिंग अवर बेनिफिट, इट विल ब्रिंग बेनिफिट टू द अदर्स एज वेल।
अगर हमने ऐसी कोई बात सुन ली जो श्रीमत के बरखिलाफ है, क्या?
इफ वी हर्ड समथिंग दैट इज अगेंस्ट द श्रीमत, वॉट?
श्रीमत की, श्रीमत से बरखिलाफ सबसे बुरी बात दुनिया में कौन सी है?
विच इज द वर्स्ट टॉपिक अगेंस्ट श्रीमत इन द वर्ल्ड,
जो हमें दुनिया वालों ने सुनाई।
दैट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड टोल्ड अस,
सर्वव्यापी,
द ओमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड।
क्या?
वॉट?
सर्वव्यापी वाली बात जो है, कोई हमें ज्ञान सुनाता है, कुछ भी सुनाता है।
द टॉपिक ऑफ ओमनी प्रेजेंस, इफ समवन नरेट्स नॉलेज और एनीथिंग एल्स,
तो उसमें ये देखो कि इसने जो कुछ हमको सुनाया उससे परमात्मा बाप सर्वव्यापी साबित होता है या एक व्यापी साबित होता है।
Then check in it. Whatever he has narrated to us, does it prove the Supreme Soul Father to be omnipresent or does it prove him to be present in one?
जो कुछ भी सुनाया,
whatever was narrated,
उस सुनाने वाले ने जो सुनाया उस सुनाने से बाप ये सर्वव्यापी साबित कर रहा है कि एक व्यापी साबित कर रहा है।
Whatever was narrated by the speaker are his words proving the father to be omnipresent or are his words proving the father to be present in one?
अच्छा, ये विष्णु पार्टी और ये कृष्ण पार्टी, ये दुनिया भर की पार्टियाँ निकल रही है।
ओके, दिस विष्णु पार्टी एंड दिस कृष्णा पार्टी, सो मेनी पार्टीज आर इमर्जिंग।
ये जो कुछ बिना सुना रही है उससे बाप एक व्यापी साबित हो रहा है या अनेक व्यापी साबित हो रहा है?
वॉट एवर दे आर नरेटिंग, इज इट प्रूविंग द फादर टू बी प्रेजेंट इन वन और इज इट प्रूविंग द फादर टू बी प्रेजेंट इन मेनी? समवन सेड It is proving the father to be present in many.
तो अनेक व्यापी साबित हुआ तो कल्याण होगा क्या? कल्याण होगा, अकल्याण की शूटिंग हम कर रहे हैं।
So if he is proved to be present in many, then will it bring benefit or harm? We are performing the shooting of bringing harm.
यहाँ भी अकल्याण की शूटिंग करेंगे और फिर द्वापर युग से भी अकल्याण की शूटिंग करेंगे, अपना भी अकल्याण करेंगे, दूसरों का भी अकल्याण करेंगे।
We perform the shooting of bringing harm here and from the copper age too, we will bring harm to others. We will bring harm to the self as well as others.
तो क्या होगा? हमारे दुख के जन्म ज्यादा हो जाएंगे और सुख के जन्म कम होंगे।
Then what will happen? The number of our sorrowful births will increase and the number of happy births will reduce.
बाप तो कहते हैं मेरे बच्चे ज्यादा से ज्यादा जन्म सुख हो गए।
द फादर इन फैक्ट सेज माई चिल्ड्रन शुड एंजॉय द मैक्सिमम बर्थ इन हैप्पीनेस।
सुखदाता बाप के बच्चे,
दे आर द चिल्ड्रन ऑफ द फादर हु बेस्टोस हैप्पीनेस।
क्या वो धर्म पिता है तो ऐसी ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो दुखदाता बन जाते हैं, उनको फॉलो करने वाले भी दुखी बन जाते हैं।
What those religious fathers teach such knowledge that they become the givers of sorrow, that is dukhdata. Their followers become sorrowful as well.
हमको तो पढ़ाने वाला कौन है?
Who is our teacher?
हमको पढ़ाने वाला है सुखदाता बाप।
Our teacher is the father, the giver of happiness.
उसका टाइटल है सुखदाता।
His title is sukhdata.
क्या? आँख से देखेगा तो भी सुख होगा।
वॉच, इवन इफ यू लुक्स थ्रू द आईज इट विल ब्रिंग हैप्पीनेस।
कोई भी कर्म इंद्रिय से कर्म करेगा तो भी सुख होगा।
whatever action he performs through the organs of actions will also bring happiness.
ज्ञान इंद्रिय से जो भी काम करेगा वो भी सुख होगा, रिजल्ट में दुख नहीं हो सकता.
Whatever action he performs through the sense organs will also result in happiness. It cannot cause sorrow.
उसका नाम ही है शिव.
His very name is Shiv.
क्या?
What?
हर हालत में वो कल्याणकारी है.
He is benevolent in every circumstance.
किसी भी तरीके से कल्याण करता ही नहीं है.
He does not cause harm in any manner at all.
तो सुखदाता बाप के बच्चे भी कैसे होने चाहिए?
So, how should the children of the Sukhdata father be?
Sukhdayi hone chahiye.
They too should be the ones who give happiness.
Karma to sab karte hain.
Everyone performs actions.
Lekin karma karne ke piche bhav kya hai?
But what is the intention, bhav behind the actions?
Kya?
What?
Jo bhav hai wo pradhan hai.
The intention is important.
Koi bhi karma ke piche भाव क्या है?
What is the intention behind performing any action?
गाय जा रही है.
Suppose a cow is going somewhere.
कसाई पीछे से पीछा कर रहा है. हमने झूठ बोल दिया.
A butcher is following the cow from behind. We spoke a lie.
क्या? इधर नहीं जा रही है. वो तो उधर चली गई.
What? The cow is not going this way. It has gone that way.
तो बोला तो हमने झूठ.
So we spoke a lie.
भले झूठ बोला लेकिन भाव क्या है?
Although we lied, what is the intention?
गाय की सुरक्षा हो जाए तो कसाई दूसरे काट देगा. है?
The cow should be saved. The butcher will indeed kill it.
अब यहाँ वो गाय की बात नहीं है.
Now here it is not about those cows.
यहाँ कौन सी गई है? Human गऊ है. ये कन्या माता है गऊ है.
Which kind of cows? The human cows are present here. These virgins and mothers are cows.
आजकल कसाई उनके पीछे पड़े हुए.
Nowadays butchers are chasing them.
कन्या माता है किसी तरह अपना पल्ला छुड़ा करके आश्रम में सरेंडर होने के लिए आती है.
Somehow the virgins and mothers avoid them and come to the ashram to surrender themselves.
कसाई पीछे पड़ जाते.
The butchers chase them.
वो उल्टी बातें करने लग पड़ते.
They start acting in an opposite way.
यहाँ आश्रम में ऐसे होता है, यहाँ आश्रम में वैसे होता है.
It happens like this here in the ashram and it happens like that here in the ashram.
अरे तुम्हारी दुनिया में क्या होता है?
अरे what happens in your world?
यहाँ तो आपने सारी पोल पट्टी मुरली में खोल दी है एक एक की.
Here the father has revealed the secrets of everyone in the murli.
बाप तो कहते हैं आज बाप बच्ची को नहीं छोड़ता.
The father says, today a father does not leave his daughter without assaulting her.
Mama, भांजी को नहीं छोड़ता.
A maternal uncle does not leave his niece.
भाई बहन को नहीं छोड़ता.
A brother does not leave his sister.
जीजा साली को नहीं छोड़ता.
A brother-in-law does not leave his sister-in-law.
तो दुनिया में क्या लगा पड़ा?
So what is happening in the world?
बाप आकर के जो कुछ देते हैं वो और दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता.
Nobody in the world can give whatever the father gives when he comes.
वो सुखदाता है.
He is the giver of happiness.
उसको दुखदाता का टाइटल कोई देना चाहे तो उसको मिल नहीं सकता.
If someone wishes to give him the title of the giver of sorrow, then he cannot get it.
सूर्य के ऊपर कोई कीचड़ उछाले.
If someone throws garbage on the sun.
कीचड़ ले इकट्ठा करे.
If he collects garbage and throws it up.
तो क्या होगा?
Then what will happen?
वो कीचड़ वापस ही आएगा, उसी के मुंह पे पड़ेगा कि.
The garbage will certainly come back. It will return and fall back right on his face.
थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन गिरेगा वहीं आके.
It may take some time, but it will come and fall right there.
इसलिए निश्चिंत रहना चाहिए.
That is why we must remain carefree, निश्चिंत.
क्या किस बात से? कोई ग्लानी करता है तो उसे प्रभावित नहीं होना चाहिए.
carefree from what? If someone brings defamation, then we must not be influenced by it.
कोई हमारी ग्लानी करता है, हमारे बाप की ग्लानी करता है.
If someone brings our defamation, if someone defames our father,
और हम प्रभावित है कैसे कैसे करता है, हमसे नहीं सुना जाता, हम नहीं सुन सकते, हम मार पिटाई कर देंगे. नहीं.
And if we are influenced and think he acts in such a manner, I cannot hear it, I cannot listen it, I will beat him. No.
हम इसके निमित्त न बने.
We should not become instruments for that.
एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल.
We should listen from one ear and leave it through the other.
हमारे कान कच्चे थोड़े ही हैं. हम तो पक्के कान वाले.
Our ears are not weak. Our ears are strong.
भले कोई हमको कितना भी सुनाता रहे.
It does not matter if someone keeps narrating to us to any length.
टेप रिकॉर्डर बजता रहे.
If a tape recorder is on.
अच्छा ढोल बजी रहे, बजते रहे.
अच्छा if some musical instruments are being played.
अच्छा एटम बम फटते रहे.
अच्छा if atom bombs are exploding,
और हम बाप की याद में बैठे रहे.
And we sit in the remembrance of the father,
तो क्या कहेंगे.
So what would be said?
हमारी स्मृति पक्की है या कच्ची है.
पक्की है.
Is our remembrance strong or weak? It is strong.
अगर हमको प्रभाव पड़ता है बाहरी, तो हम कच्चे.
If we are influenced by the external circumstances, then we are immature.
इसलिए ये टेप रिकॉर्डर बजा बजा करके याद करना, ये भी कच्चा मन है.
That is why remembering the father by playing the tape recorder is also an immaturity.
कोई माँ होती है, वो अपने बच्चे को याद करती है.
Suppose there is a mother, she remembers her child.
बच्चा लंदन में पढ़ाई पढ़ रहा है.
The child is studying in London.
तो क्या ढोलक मजीरा बजा बजा के याद करती है?
Then does she remember him by playing musical instruments, that is drums and cymbals?
ये ओरिजिनल याद है या डुप्लीकेट याद है? डुप्लीकेट.
Is this original remembrance or duplicate remembrance? A duplicate one.
तो भगवान को डुप्लीकेट याद क्यों करना?
So why should we remember God in a duplicate manner?
भगवान नहीं देखता, ये हमको डुप्लीकेट याद कर रहे हैं.
Does God not see this one is remembering me in a duplicate manner? Someone said he does see it.
अंदरूनी लगन नहीं है तो ढोलक मजीरा बजा रहे.
Yes, if there is no dedication, that is lagan, from within, then they play the musical instruments.
बाप कहते हैं याद भी कैसी होनी चाहिए.
The father says, how should be the remembrance?
ओरिजिनल याद होनी चाहिए, सच्ची याद होनी चाहिए.
द रिमेम्बरेंस शुड बी ओरिजिनल, द रिमेम्बरेंस शुड बी ट्रू.
लगन होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए परमात्मा के प्रति, कि हमको उससे क्या मिलता है.
देर शुड बी डेडिकेशन, देर शुड बी लव फॉर द सुप्रीम सोल, थिंकिंग अबाउट व्हाट वी गेट फ्रॉम हिम.
जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्ति होती है.
वी ऑब्टेन फ्रूट्स फॉर मेनी बर्थ्स.
एक जन्म की प्राप्ति नहीं है.
इट इज नॉट द फ्रूट्स फॉर जस्ट वन बर्थ.
21 जन्मों की प्राप्ति और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों की भी प्राप्ति है.
देर आर द फ्रूट्स फॉर 21 बर्थ्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ 21 बर्थ्स देर आर द फ्रूट्स फॉर 63 बर्थ्स एज वेल.
आधार पर कैसे?
हाउ इज इट ऑन द बेसिस ऑफ.
हाँ, यहाँ 21 जन्मों का हमने जो पुरुषार्थ किया ना प्राप्ति का.
Someone said we are habituated. Yes, whatever purusharth we made here for the fruits,
उस 21 जन्मों के आधार पर हमारी प्रैक्टिस पड़ गई.
Based on the efforts done for the 21 births, we became practiced.
क्या?
What?
याद की भी प्रैक्टिस, कर्म करने की भी प्रैक्टिस.
Of remembrance, we put the practice of remembrance, the practice of performing actions as well.
सेवा करने की भी प्रैक्टिस, दैवी गुण धारण करने की भी प्रैक्टिस.
द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग सर्विस एंड द प्रैक्टिस ऑफ इम्बाइबिंग डिवाइन वर्च्यूज टू.
ये जो प्रैक्टिस हम तीव्रता से धारण करते हैं, वो 63 जन्मों में वो संस्कार हमारे साथ रहते हैं. दिव्य पुरुषार्थ करने के।
This practice which we inculcate strongly, those संस्कार्स of making fast पुरुषार्थ remain with us for 63 births.
यहाँ जितना हम तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे वो तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार वहाँ भी जाएंगे।
The more we become the ones who do fast पुरुषार्थ here, the संस्कार्स of making fast पुरुषार्थ remain with us there too.
जैसे बाबर है।
For example, Babur.
Babur, छोटा सा सिपाही था।
Babur was a small soldier.
और क्या बन गया?
And what did he become?
भारत का सम्राट बन के बैठ गया।
He became the emperor of India.
तो एक ही जन्म में इतना भारी पुरुषार्थ कैसे कर लिया उसने?
How did he make great पुरुषार्थ like this in a single birth?
ये संस्कार थे उसके।
These were his संस्कार्स।
ये संस्कार करने के पुरुषार्थ होते हैं।
These are संस्कार्स of making पुरुषार्थ।
पुरुषार्थ यहाँ किया है उन आत्माओं ने।
Those souls have made पुरुषार्थ here।
तो जो पुरुषार्थ किया है वो पुरुषार्थ बाप हमको सिखाते हैं।
So the पुरुषार्थ which they made, the father teaches us that पुरुषार्थ।
ऐसा तीव्र पुरुषार्थी और कोई बना है नहीं सकता जो बाप हमको तीव्र पुरुषार्थी बनाते
हैं। Nobody else can make us into fast पुरुषार्थीज, that is the ones who make special effort for the soul, like the one the father does.
ऐसा तीखा ज्ञान और किसी का है ही नहीं। कैसा?
Nobody else possesses such a sharp knowledge at all. Like what?
चंद्रमा की तरह।
Is it like the moon?
चंद्रमा की तरह। चंद्रमा का तीखा पुरुषार्थ नहीं, तीखा ज्ञान नहीं होता है।
The पुरुषार्थ made by the moon is not fast. The knowledge is not sharp.
चंद्रमा का तो बहुत मीठी मीठी रोशनी होती है।
The moon has a very sweet, calm light.
क्या? चंद्रमा की इतनी शीतल रोशनी, मीठी रोशनी होती है।
The moon has such a cool light, such a sweet light.
कि कीड़े मकोड़े भी, बिच्छू टिंडन भी उस रोशनी में पलते रहते।
That even worms and insects, scorpions and spiders keep growing in that light.
सूर्य की रोशनी में जो कीड़े मकोड़े, बिच्छू टिंडन है वो मर जाते हैं या बाग खड़े होते हैं अंधेरे में।
In the sunlight, the worms and insects, scorpions and spiders either die or run away to darkness. Someone said they go underground.
हाँ, जमीन के नीचे चले जाते हैं, अभिमान की मिट्टी में गड़ जाते हैं। क्या?
Yes, they go underground. They bury themselves in the soil of body consciousness. What?
दूसरे धर्म की आत्माएं जलाई जाती हैं? या गाढ़ा जाता है उनको? उनको गाढ़ा जाता है।
Are the dead bodies of the souls belonging to the other religions cremated or buried? They are buried.
ये कहाँ की रस्म पड़ी?
Where was this tradition started?
संगम युग में जब बाप आते हैं तो पूरा ज्ञान नहीं सुनते।
When the father comes in the confluence age, then they do not listen to the complete knowledge.
Pura gyan nahi sunte to paap karma unke sare bhasm nahi hote.
When they do not listen to the complete knowledge, not all their sins are burnt.
To yog agni mein pure jalte nahi, mana devan unka reh jata hai aur devan ki mitti mein wo gaade jaate.
So the sins do not burn completely in the fire of yoga, meaning their body consciousness remains and they are buried in the soil of body consciousness.
यहाँ देवान की मिट्टी में गड़ेंगे तो वहाँ भी 63 दिन
गाड़ेंगे।
देवान की मिट्टी में उनका शरीर गाड़ा जाता रहेगा।
When they are buried in the soil of body consciousness here, then their bodies will be buried in the soil of body consciousness there in the 63 births as well.
और यहाँ जिन्होंने अपने देवान को योग अग्नि में जलाया होगा।
And here those who burnt their body consciousness in the fire of yoga.
क्या? पक्का पक्का जला करके खाक कर दिया होगा। क्या?
What? They would have burnt it completely into ashes. What?
कुछ भी बाकी न बचे।
Nothing should remain.
तो वहाँ भी जन्म जन्मांतर उनके शरीर जलाते रहे.
सो देयर बॉडीज विल बी बर्न्ड दैट इज क्रीमेटेड देयर टू बर्थ आफ्टर बर्थ.
बच्चा होता है ना तो बच्चे को जलाते नहीं है.
Suppose it is the dead body of a child, then the child is not cremated.
क्या करते हैं? हैं? गाड़ देते. क्यों?
What do? They bury it. Why?
तो उसके भीतर कुछ बने ही नहीं ना.
Someone said it is because it did not commit any sins at all. Did it?
नहीं.
No.
यहाँ भी जो बच्चा बुद्धि होते हैं ज्ञान में.
Even here, those who possess the intellect of a child in the path of knowledge,
पूरा ज्ञान नहीं उठाते, बच्चा बुद्धि बन के रह जाते हैं.
They do not imbibe the complete knowledge. They remain with the intellect of a child.
तो वो देहवन की मिट्टी में गड़ते जरूर, जैसे बेसिक नॉलेज वाले.
So they are definitely buried in the soil of body consciousness, just like those who follow the basic knowledge.
बच्चा बुद्धि वाली नॉलेज है ना, बेसिक नॉलेज है ना.
इट इज नॉलेज फॉर दोज विद एन इंटेलेक्ट ऑफ अ चाइल्ड, इजंट इट? इट इज अ बेसिक नॉलेज, इजंट इट?
छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई है.
इट इज नॉलेज फॉर स्मॉल चिल्ड्रन.
एडवांस नॉलेज तो वो पढ़ते ही नहीं.
पढ़ते ही नहीं.
दे डू नॉट स्टडी द एडवांस नॉलेज एट ऑल.
तो फिर अगर जब वो मरेंगे तो देवानी की मिट्टी में गड़ेंगे.
So when they die, they will be buried in the soil of body consciousness.
सारा foundation यहाँ पड़ता है.
So the entire foundation is laid here.
क्या?
What?
सारा foundation यहाँ पड़ता है.
21 जन्मों का भी foundation यहाँ पड़ रहा है.
The foundation of the 21 births is being laid here.
और 63 जन्मों का भी foundation यहाँ पड़ रहा है.
As well as the foundation of 63 births is being laid here.
रावण राज्य का भी फाउंडेशन यहाँ पड़ रहा है और राम राज्य का भी फाउंडेशन यहाँ पड़ रहा है.
The foundation of the kingdom of Ravan is being laid here as well as the foundation of the kingdom of Ram is being laid here.
जितना हम श्रीमत पर पक्के होकर के चलते हैं उतना 21 जन्मों की प्राप्ति कर रहे हैं.
The more strongly we follow the श्रीमत, the more attainments we are making for the 21 births.
और जितना हम परमत पर मिक्स होकर के अब दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं.
एंड द मोर वी मिक्स द ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स
उतना हम पतित पतित होने वाली दुनिया की शूटिंग कर रहे हैं.
द मोर वी आर परफॉर्मिंग द शूटिंग ऑफ द वर्ल्ड दैट बिकम्स सिंफुल.
क्योंकि हर आत्मा जो सतयुग में जाती है वो त्रेतायुग में द्वापरयुग में गिरती तो है ना.
बिकॉज एवरी सोल विच बैक टू द गोल्डन एज डेफिनेटली विटनेसेस डॉन फॉल इन द सिल्वर एज कॉपर एज, डजंट इट?
ऐसी कोई आत्मा है जो सतयुग में जाए सूर्यवंशी बने और त्रेता में जाके चंद्रवंशी न बने?
इज देयर एनी सोल विच गोज टू द गोल्डन एज बिकम्स सूर्यवंशी, दैट इज दोज बिलोंगिंग टू द सन डायनेस्टी एंड डज नॉट बिकम चंद्रवंशी, दैट इज दोज बिलोंगिंग टू द मून डायनेस्टी इन द सिल्वर एज?
हर मनुष्य आत्मा को नीचे गिर करके सूर्यवंशी से चंद्रवंशी जरूर बने.
Every human soul has to definitely experience downfall and transform from a Suryavanshi to a Chandravanshi.
फिर द्वापर युग में वैश्यवंशी विशेष विषय विकारों को भोगने वाला जरूर बनना पड़े.
Then in the copper age, he has to definitely become Vaishyavanshi, vicious, those who enjoy sensual pleasures and vices.
चाहे वो राम कृष्ण की ही आत्मा है क्यों न हो उनको भी नीचे गिरना पड़ता है.
इवन इफ दे आर द सोल्स ऑफ राम एंड कृष्ण, दे टू हैव टू एक्सपीरियंस डाउनफॉल.
हाँ, ये हो सकता है कि कोई आत्माओं की गिरने की गति धीमी होगी.
Yes, it may happen that the rate of downfall is slow in the case of some souls.
माने जो ज्यादा श्रीमत पर चलने का यहाँ पुरुषार्थ करेंगे उनकी गिरने की गति धीमी होगी.
It means that those who make purusharth to follow the श्रीमत more here will have a slower rate of downfall.
और जो यहाँ श्रीमत पर चलने का ध्यान नहीं देंगे.
एंड दोज हु डू नॉट पे अटेंशन टू फॉलोइंग द श्रीमद हियर,
बाबा के महावाक्यों पर ध्यान देते नहीं.
दोज हु डू नॉट पे अटेंशन टू द वर्जन्स ऑफ पापा एट ऑल,
बाबा की पढ़ाई का ध्यान देते ही नहीं.
दोज हु डू नॉट पे अटेंशन टू द नॉलेज ऑफ पापा एट ऑल,
मुरली रोज ध्यान से पढ़ते ही नहीं.
दोज हु डू नॉट स्टडी द मुरली डेली एंड केयरफुली एट ऑल,
जो पढ़ाई पे यहाँ ध्यान नहीं देते तो उनका फिर शूटिंग कैसी होती है.
Those who do not pay attention to the studies here, then how will their shooting take place?
जल्दी से नीचे गिर जाएंगे. ज्यादा पाप करते हैं तो ज्यादा पाप करने से आत्मा जल्दी नीचे गिरती है.
They experience downfall very fast. They commit more sins. So by committing more sins, the soul experiences downfall very fast.
जैसे सेकंड नारायण है क्या?
For example, the second Narayan. What?
Second Narayan और Narayani सतयुग में बनेंगे. Second Narayan, Narayani दो नंबर के.
The second Narayan and Narayani will become the second Narayan, Narayani in the golden age, in the second place.
लेकिन द्वापर युग से दूसरे नंबर के धर्म पिता में संकर रंग लग जाएगा.
However, they will be colored, that is influenced by the company of the second religious father in the copper age.
क्यों? दूसरे नंबर का धर्म पिता इब्राहिम आकर उनमें प्रवेश करेगा.
Because the second religious father, that is Abraham, will come and enter them.
कब प्रवेश करता है? किन्हीं में प्रवेश होता है? पतित में प्रवेश होता है या पावन में प्रवेश होता है?
When does he enter? In whom does he enter? Does he enter a sinful one or a pure one?
जो कमजोर बन जाती है आत्मा उनमें पावरफुल आत्मा प्रवेश करती है.
The powerful souls enter the bodies of the souls which become weak.
हम सूर्यवंशियों में प्रवेश नहीं हो सकता.
They cannot enter into us Suryavanshis.
इब्राहिम भी प्रवेश नहीं कर सकते. इब्राहिम के फॉलोअर्स भी प्रवेश नहीं कर सकते.
Abraham cannot enter. The followers of Abraham cannot enter either.
बौद्ध भी प्रवेश नहीं कर सकते. बौद्धियों के फॉलोअर्स भी हमें प्रवेश नहीं कर सकते.
The Buddhists cannot enter, neither can the followers of the Buddhists enter us.
हम तो सूर्यवंशी हैं. सूर्यवंशियों में उन आत्माओं का, विधर्मी आत्माओं का प्रवेश नहीं हो सकता. वो हमारे ऊपर कंट्रोल, हमारे ऊपर सवारी करेंगे.
वी आर सूर्यवंशीज. Those souls, the Vidharmi souls, cannot enter the Suryavanshis. Will they control us or ride over us? Someone said, they fear us, Baba. Yes, they will fear us. Someone said, they will not even come to narrate to us. Yes, yes.
सामना भी नहीं करेंगे.
They will feel afraid to even face us. They will not even face us.
पता पड़ता है चलो हम हार जाएंगे तो क्यों सामना?
हाँ, सामना नहीं करेंगे.
Someone said, when they know, well, we are going to lose, then why will they face us? Yes, they will not face us.
हम तो शेर के बच्चे, शेर.
We are lions, the children of the lion.
और शेर तो किसी से डरता नहीं. आओ हम मुकाबला करें.
And the lion fears no one. Come, let us face each other. Someone said, come to the arena.
है मैदान में आओ.
Yes, come to the arena.
लेकिन शेर भी दो तरह के होते हैं क्या?
But the lions are of two kinds. What?
एक शेर होता है बबर शेर, चौड़े मोड़े वाला.
One kind of lion is a babar lion with an extensive mane.
और एक होता है छोटे मोड़े वाला, लंबी लंबी चित्तियाँ पड़ी हुई होती.
And another kind of lion has a small mane. It carries long stripes on its skin.
उसे कहते हैं बाघ.
It is called tiger, बाघ.
और एक होता है शेर.
And one is a lion.
तो शेर जो है वो सीधा आक्रमण करता है.
The lion attacks directly.
इधर से गोली आई.
If the gun shot is fired from this way,
तो जिधर से गोली आई वहीं छलांग मारेगा सीधा.
Then it will jump directly in the direction from where the shot was fired.
ये नहीं देखेगा कि वहाँ जहाँ से गोली आई वो दो चार गोलियाँ और छोड़ देगा.
it will not think that the direction from which the shot was fired, that person may fire two or four more shots.
और चीता क्या करेगा?
मौका देखेगा.
बाघ देखेगा गोली आई फटाक से पोजीशन ले लेगा.
And what will a cheetah, that is a tiger, do? A tiger will observe. As soon as the shot is fired, it will take a position.
Position लेगा और देखेगा अब हाँ वो जा रहा है पीछे.
It will take a position and observe. Yes, now that person is retreating.
मौका देख करके बात करेगा.
Then, finding an opportunity, it attacks.
तो त्रिमूर्ति में भी एक है बबर शेर.
So also in the त्रिमूर्ति one is a बबर lion.
क्या और एक है बाघ.
What and one is a tiger.
हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन राष्ट्रीय पशु कौन सा है.
What is the national animal of our country? Someone said the lion.
कौन सा शेर है
बबर शेर.
Which lion? Someone said बबर शेर. The lion. बबर शेर.
हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है.
What is the national animal of our India?
शेर तो है लेकिन शेर दो प्रकार के बताए ना.
It is certainly the lion, but two kinds of lions have been mentioned, haven't they?
कौन है.
What is it?
बाघ. क्या.
The tiger. What?
चीता. टाइगर. क्या.
The cheetah. The tiger. What?
हमारा देश का जो वो है क्या नाम पशु है पशु राष्ट्रीय है वो है चीता.
The national animal of our country is the cheetah.
है.
उसकी छलांग लंबी रहती.
हाँ जी.
Someone said it takes a huge leap. Yes.
तो हम तो शेर के बच्चे शेर हैं.
So we are lions, the children of a lion.
ऐसे तो मुरली में बोला है कि मुरली में तीन शेर है ही नहीं. क्या.
It has been said in the Murli that there aren't three lions at all in the national emblem of the three lions. What?
ज्ञान की दहाड़ मारने वाले जो तीन शेर दिखाए गए हैं आजकल नोटों में झंडे में स्टाम्प पेपर्स में.
The three lions producing the roars of knowledge which have been depicted in the notes, the flag, stamp papers nowadays.
वो तीन शेर वास्तव में तीन शेर नहीं है.
Those three lions are actually not lions.
उनमें शेर एक है और बाकी दो है घोड़ा और बकरी.
Among them, one is a lion and the remaining two are a horse and a goat.
क्या.
What?
मनरूपी घोड़ा.
The mind in the form of horse.
और एक है बकरी.
And one is a goat.
जिसने कान पकड़ लिया बस उसी के ऊपर बन जाते हैं.
Whoever holds its ear, that is all. It becomes the property of just that person.
घोड़ा.
A horse.
जिसने लगाम पकड़ ली. जिसने उसकी लगाम पकड़ ली बस उसी का बन के रह जाएगा.
Becomes the property of the person who holds its reins.
तो मन को लगाम में रखो. किसके द्वारा. बुद्धि के द्वारा.
So keep the mind bridled. Through whom? Through the intellect.
बुद्धि से ज्ञान मिला हुआ है.
The knowledge has been received through the intellect.
जो ज्ञान मिला हुआ है उस ज्ञान के आधार पर हम मन रूपी घोड़े को कंट्रोल कर सकते हैं.
We can control the mind in the form of horse on the basis of the knowledge that has been received. Om Shanti.